ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा चुनाव के प्रत्यक्ष उम्मीदवारों में से देशभर में 49 उम्मीदवारों ने ली उम्मीदवारी वापस। पार्टी सभापति गगन कुमार थापा को आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करने का नेपाली कांग्रेस का निर्णय। न्यायालय में आगजनी बेशक हुई है लेकिन नागरिकों को दिया जाने वाला न्याय नहीं जला है, प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत का कथन। परसों होने जा रहे राष्ट्रीय सभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी। और अमेरिका आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से हो गया है अलग। अब समाचार विस्तार से। आगामी फागुन 21 गति को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए देशभर के विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से 49 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है, ये जानकारी चुनाव आयोग ने दी। आयोग द्वारा आज आयोजित साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टाराय ने कहा कि अब तक विभिन्न चुनाव क्षेत्रों से आयोग की प्रणाली में प्राप्त विवरण के अनुसार 49 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिया है। आयोग के अनुसार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की अंतिम नामावली आज देशभर के 77 मुख्य चुनाव अधिकृत और 88 चुनाव अधिकृत कार्यालयों के माध्यम से प्रकाशित कर दी गई है। इसके अलावा पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता भट्टराय ने बताया कि समानुपातिक चुनाव प्रणाली की ओर से उम्मीदवारों की नामावली भी प्रकाशित कर दी गई है और कल तक दावा आपत्ति दर्ज करने का समय दिया गया है। समानुपातिक प्रणाली के लिए राजनीतिक दलों ने गत पौष 13 और 14 को बंद सूची पेश की थी। पत्रकार सम्मेलन में यह भी जानकारी दी गई कि कल समानुपातिक प्रणाली की दावा आपत्ति प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अंतिम नामावली प्रकाशित की जाएगी। आगामी फागुन 21 गति को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव में मनांग से नेकपा एमाले के उम्मीदवार पोलदिन छोपांग गुरुंग और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के उम्मीदवार कुबीर सिंह गुरुंग ने अपना नामांकन वापस लेने का आवेदन दिया है। मुख्य चुनाव अधिकृत राम प्रसाद पोडेल के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा दिया गया नामांकन वापसी का पत्र दर्ज हो चुका है। प्रतिनिधि सभा गोरखा क्षेत्र नंबर 2 से आगामी फागुन 21 को होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवार बने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ बाबूराम भट्टराय ने आज अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। गोरखा नगरपालिका 8 स्थित चुनाव कार्यालय में अपने प्रतिनिधि नारायण खत्री के माध्यम से डॉ भट्टराय ने नामांकन वापस ले लिया, ये जानकारी चुनाव अधिकृत मोहन प्रसाद बेलबासे ने दी। उन्होंने प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से उम्मीदवारी दायर की थी। नेपाली कांग्रेस ने नवनिर्वाचित पार्टी सभापति गगन कुमार थापा को भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करते हुए चुनाव में जाने का निर्णय किया है। पार्टी के केंद्रीय कार्यालय सानेपा में आज हुई केंद्रीय कार्य समिति की बैठक ने सभापति थापा को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाने का सर्वसम्मत निर्णय किया। ये जानकारी बैठक के बाद नेपाली कांग्रेस के उपसभापति विश्व प्रकाश शर्मा ने दी। उपसभापति शर्मा ने बताया कि वर्तमान कांग्रेस द्वारा आगे बढ़ाया गया उम्मीदवार समय की मांग और युवा पीढ़ी की भावनाओं को नेतृत्व देने के साथ साथ देश की विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता को भी संबोधित करने में सक्षम है, ऐसा कांग्रेस का निष्कर्ष है। कांग्रेस ने इससे पहले 2056 साल के आम चुनाव में कृष्ण प्रसाद भट्टाराय को भावी प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ाकर चुनाव लड़ा था। इसी तरह बैठक ने आगामी माघ 11 को होने वाले राष्ट्रीय सभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए आवश्यक समन्वय के लिए पार्टी उपसभापति पुष्पा भूषाल के संयोजकत्व में सभी प्रदेशों के सभापतियों को जिम्मेदारी देने का निर्णय किया। बैठक में जिनजी आंदोलन से क्षतिग्रस्त केंद्रीय कार्यालय भवन के पुनर्निर्माण के लिए पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ के संयोजकत्व में भवन पुनर्निर्माण समिति गठित करने सहित अन्य निर्णय भी किए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने कहा कि समय की कमी के कारण वर्तमान उम्मीदवार चयन में कुछ त्रुटियां रह गई हैं जिन्हें आने वाले दिनों में सुधारा जाएगा। सभापति थापा ने अब बदली हुई कांग्रेस के साथ देश को बदलने के संकल्प के तहत एकजुट होकर चुनाव पर केंद्रित होने के लिए पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया। माघ 11 गति होने जा रहे राष्ट्रीय सभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज निर्वाचन आयोग द्वारा बुलाए गए साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारी पंजीकरण दावा और विरोध जांच अंतिम नामावली प्रकाशन और चुनाव चिन्ह वितरण आदि सभी काम पूरे हो चुके हैं। साथ ही चुनाव के लिए मतपत्र भी संबंधित निर्वाचन अधिकृत कार्यालयों में भेजा जा चुका है। राष्ट्रीय सभा चुनाव माघ 11 के रविवार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संबंधित प्रदेशों के निर्धारित मतदान केंद्रों में होगा। माघ 11 गते 18 राष्ट्रीय सभा सदस्यों के लिए चुनाव होगा। इसमें नेपाली कांग्रेस के सुनील बहादुर थापा निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 17 राष्ट्रीय सभा सदस्यों के लिए सभी 7 प्रदेशों की राजधानियों में मतदान होंगे, ये जानकारी आयोग ने दी। राष्ट्रीय सभा सदस्य चुनाव के लिए प्रदेश सभा सदस्य स्थानीय तहों के प्रमुख उप प्रमुख और अध्यक्ष उपाध्यक्ष मतदाता होंगे। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत ने कहा कि न्यायालयों में भले ही आग लगी हुई है लेकिन नागरिकों को दिया जाने वाला न्याय नहीं जला है। आज उच्च अदालत पोखरा बागलोंग इजलास के अत्याधुनिक भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधान न्यायाधीश राउत ने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में जल चुके 20,000 मिसिलों में से 14,000 से अधिक तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुविधा संपन्नता से अधिक सेवा प्रवाह में संतुष्टि देना जरूरी है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सरकार ने निर्धारित उद्योग व्यवसाय क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से होने वाले विदेशी निवेश की ऊपरी सीमा हटाने का निर्णय किया है। आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में मंत्रिपरिषद के निर्णय सार्वजनिक करते हुए सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने बताया कि स्वचालित मार्ग से होने वाले विदेशी निवेश पर लगी अधिकतम सीमा हटाने को स्वीकृति देने का निर्णय किया गया है। इसी तरह मंत्रिपरिषद की बैठक ने भक्तपुर जिले में नेपाल सरकार के नाम पर दर्ज 5 रोपनी यानी 7.5 कट्ठा जमीन का प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला के लिए कार्यालय भवन निर्माण के लिए उपयोग करने की स्वीकृति देने का निर्णय किया है। इसके अलावा बैठक ने काभरे पलांचोक जिले में नेपाल सरकार के नाम पर दर्ज 1 रोपनी यानी 1.5 कट्ठा जमीन का पेयजल तथा सरसफाई डिवीजन संख्या 3 सिंधुपालचोक को उपयोग के लिए स्वीकृति देने का निर्णय भी किया है। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाने वाली श्री पंचमी आज पूरे देश में विद्या की देवी सरस्वती की विधिपूर्वक पूजा अर्चना कर मनाई गई। आज देशभर के सरस्वती मंदिरों में पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। इस दिन बच्चों को शिक्षा का आरंभ कराया जाता है तथा नाक और कान छेदने की परंपरा भी है। इसी प्रकार आज के दिन साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक और विद्यार्थी अपनी अपनी कला साधना से जुड़े सामान जैसे कलम, कॉपी, वाद्य यंत्रों की सरस्वती स्वरूप में पूजा करते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने, दिनों के लंबे होने और वसंत ऋतु के आरंभ के विश्वास के साथ इस दिन को वसंत पंचमी भी कहा जाता है। इसी तरह तराई मधेश के प्राचीन मिथिला क्षेत्र में यह पर्व माता सरस्वती की पूजा के साथ ही कृषि नववर्ष उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मिथिला क्षेत्र में आज के दिन हल, कुदाल सहित कृषि से जुड़े औजारों को धो पोंछ कर पूजा करने की परंपरा भी है। साथ ही मिथिला क्षेत्र के किसान इसी दिन आने वाले वर्ष की खेती बाड़ी की योजना बनाते हैं और इस पर्व को हरियाली और समृद्धि के प्रतीक के रूप में परंपरागत रूप में मनाते आए हैं। आगामी फागुन 21 तारीख को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के अंतर्गत समानुपातिक चुनाव प्रणाली की ओर से 1.5 करोड़ मतपत्रों की छपाई पूरी हो चुकी है, ये जानकारी निर्वाचन आयोग ने दी। जनक शिक्षा सामग्री केंद्र लिमिटेड के मुद्रणालय में छपाई हो रहे मतपत्रों में से अब केवल 50 लाख मतपत्र बाकी हैं। समानुपातिक प्रणाली के मतपत्रों की छपाई पूरी होने के बाद प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के लिए मतपत्रों की छपाई शुरू की जाएगी, ये जानकारी चुनाव आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय ने दी। मतदाता नामावली की छपाई आयोग परिसर में ही की जा रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग हो गया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी को अपने सबसे बड़े डोनर्स में से एक खोना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साल पहले इस फैसले का संकेत देते हुए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय उन्होंने कोविड महामारी के दौरान संगठन पर चीन के पक्ष में होने का आरोप लगाया था। अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने कहा कि यह फैसला WHO की ओर से महामारी से निपटने में कथित गलत प्रबंधन और सुधार करने में उसकी असमर्थता के कारण लिया गया। हालांकि WHO ने इन आरोपों को खारिज किया है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रियसस ने कहा कि अमेरिका का अलग होना न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए नुकसान है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा चुनाव के प्रत्यक्ष उम्मीदवारों में से देशभर में 49 उम्मीदवारों ने ली उम्मीदवारी वापस। पार्टी सभापति गगन कुमार थापा को आगामी चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करने का नेपाली कांग्रेस का निर्णय। न्यायालय में आग लगी बेशक हुई है लेकिन नागरिकों को दिया जाने वाला न्याय नहीं जला है, प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत का कथन। परसों होने जा रहे राष्ट्रीय सभा चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, निर्वाचन आयोग ने दी जानकारी। और अमेरिका आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से हो गया है अलग। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।